आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
श्री रामलाल बरेठ कला नृत्य।
ये आवाज राष्ट्रपति भवन में कथक नृत्याचार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए दी गई आवाज है। छत्तीसगढ़ की तीन हस्तियों को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। बिरहोर व पहाड़ी कोरबा पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए जशपुर नगर के जागेश्वर यादव को, नारायणपुर के वैद्यराज हेमचंद माझी को और रायगढ़ से जुड़े कला गुरु रामलाल प्रतीत को। रायगढ़ कथक घराने को सहेजने और इस क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए इनको ये सम्मान दिया गया। वीराजा चक्रधर सिंह के दरबार के रत्नों में से एक माने जाते हैं। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के बाद वे अपने वर्तमान निवास बिलासपुर पहुंचे। द्वारपा टीम ने इनसे बातचीत की। आइए सुने इनसे संज्ञा टंडन की बातचीत और मातृका से कथक गुरु श्री रामलाल बरेठ जी के जीवन की विस्तृत जानकारी पर आधारित कार्यक्रम। संयोजन किया है अनीश श्रीवास ने।
आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला, लेने के लिए गए आप वहां पे, कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा। तो इतना बड़ा सम्मान है देश का, इतना बड़ा सम्मान पाने से तो बहुत खुशी होगी। खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है।
जी हाँ, जिस समय आपने नृत्य शुरू किया था, आपने जब डांस करना शुरू किया था, आपके पिताजी का बहुत नाम था उस समय, और आजादी के पहले की बात है,
ये तो है।
तो उस समय और अभी में आपको क्या फर्क लगता है?
ओहो, अब भला बताइए। मेरा तो आजादी के पहले राजाओं का राज था, अंग्रेजों का शासन था, और उस जमाने का जो वातावरण था एक अलग था, और आज के समय में जो समय आ गया इसमें तो बहुत अंतर है, दिन रात का अंतर है। आजादी के समय में कला के क्षेत्र में ही मैं आपको बता रहा हूँ कि कलाकार लोग राज आश्रय ढूंढते थे, और कला के क्षेत्र में जैसे वाजिद अली शाह थे, जयपुर के सवाई सिंह महाराज थे, रायगढ़ के चक्रधर सिंह महाराज थे, तो कला को दरबार से ही आश्रय मिलता था, और कला को ये सब शौकीन जो बादशाह राजा लोग थे, ये लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करते थे।
जी।
जैसे लखनऊ घराने का वाजिद अली शाह थे, उनके जमाने में क्या था कि एक मुसलमानों का जो चलन था पर्दा में रहना, ये करना वो करना, वो पहनना ओढ़ना, वो अलग बात थी। लेकिन बिंदादिन महाराज जो वगैरह कालिका जी जो थे, ये उनके दरबार में ही आश्रय है। और दरबार में क्या था कि ग्रुप में महिलाओं को भी वहाँ के जो थे उनके साथ में शिक्षा दीक्षा कराते थे, और स्वयं वाजिद अली शाह जो है ना उसमें अपना भाग लेते थे।
अच्छा।
धीरे धीरे करके ये समाज में तो बंधन था ही, आशकाने जो रूप था ये दरबार में था, और हिंदू राजाओं में जैसे चक्रधर महाराज थे, तो उनके परंपरा को अलग करने के लिए यहाँ क्या था, अपना हिंदू वातावरण था, तो दरबार में क्या था, संगीतकार सभी विधा के गायन बाधन नृत्य सितार पखावज आपके वीणा ये सब कलाकार लोग वहाँ आते थे रायगढ़ दरबार में, और साहित्यकार लोग जितने थे बड़े बड़े उस जमाने के, एक तो स्वयं वो कलाकार थे, अपने पूर्वजों से सीखे हुए थे, और रायपुर कॉलेज में पढ़े थे, राजकुमार कॉलेज में, तो वहाँ भी संगीत का वातावरण एक पीरियड दो पीरियड चलता था, तबले का है, गायन का है, नाटक का है। उनको ये शौक हुआ कि कथक जब इस प्रकार से है, जयपुर घराने के लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा भी फर्ज होता है कि हम कथा के क्षेत्र में शास्त्रीय संगीत को आगे बढ़ाएं।
गुरु पंडित रामलाल जी रायगढ़ घराने के विख्यात नृत्य सम्राट स्वर्गीय पंडित कार्तिक राम जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आपका जन्म उस समय हुआ जब रायगढ़ दरबार का कथक अपने उभार पर था और कार्तिक कल्याण की जोड़ी पूरे देश में धूम मचा रही थी। आपका जन्म 6 मार्च 1936 को हुआ था। संगीत परिवार में जन्मे पंडित रामलाल जी की कथक के नृत्य शिक्षा का कार्य 4 की अल्पायु में अपने पिताजी के सानिध्य में आरंभ हुआ। 10 की अल्पायु में ही रायगढ़ दरबार में कला मर्मज्ञों के सम्मुख पंडित रामलाल का नृत्य प्रदर्शन हुआ। इसे देखकर महाराजा चक्रधर सिंह बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जयपुर के गुरु पंडित महाराज से नृत्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी। राजा चक्रधर सिंह स्वयं गायन वादन एवं नृत्य के विद्वान थे। वे भी पंडित रामलाल को नृत्य की शिक्षा देने लगे। पंडित रामलाल ने नृत्य की शिक्षा राजा चक्रधर सिंह पंडित जयलाल महाराज तथा पिता स्वर्गीय कार्तिक राम से गुरु शिष्य परंपरा में प्राप्त की।
तो आप इस मामले में बहुत भाग्यशाली रहे कि आप तो चक्रधर सिंह जी के सामने नृत्य करते रहे 10 की उम्र से और उन्होंने आपको खुद सिखाया।
ये क्या है इसकी कहानी भी छोटा समय बताऊं
जी।
मेरे पिताजी भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ नर्तक थे। जयपुर लखनऊ बनारस के जो कलाकार थे गुरु लोग थे उनसे भी कहीं अधिक उनका रियाज तपस्या का, क्योंकि खाने पीने के राजा साहब दरबार में कोई कमी रखे दूध बादाम जो भी खाना है माने संगीत के लिए समर्पित रहो कहने के मतलब दम तस बढ़ाने के लिए दौड़ पैर हाथ चलाना है जैसे ताकत का काम है हाफ आना है तो दौड़ धूप भी कराते थे राजमहल से लेकर सर्किट हाउस तक दौड़ वहाँ से एक सांस में आओ एक सांस जाओ दौड़ो 2-3
अच्छा
हाँ एक दूसरी बात पहलवान लोग जो थे गामा सिंह अद्धा बालानाथ पहलवान पूरन सिंह पहलवान उसके भी शौकीन थे वो और वो लोग को भी अपना आश्रय देते थे राजा तो रेती में अपना वो महल के पीछे में है वो रेती बिछा रहता था मोटा वहाँ वो लोग कुश्ती होती थी तो यहाँ भी तक क्या करो पैर चलाओ रेती अभ्यास इतना पैर का मजबूत होगा ऐसा बोलते और उनके दरबार में जो ग्रंथों की रचना हुई क्यों हुई कि कथक नृत्य के क्षेत्र में उन्होंने ये देखा कि टुकड़ा परम तोड़े रिहाई इसके सिवाय कुछ नहीं नाम कुछ नहीं था उनके जैसे बंदिश कई तरह के ताची तथी आची तथी थोन थोन तत्त उसका नाम तो नहीं था उनके यहाँ तो उन्होंने राम भी जो है ना परम जो है वो उर्दू के रूप में आता था शायद पर्ण ये तो उन्होंने पर्ण का नाम रखा पर्ण है टुकड़ा जो है उसको चोटक रखे
अच्छा।
चक्करदार को त्रिचक्री नाम रखे बंदिश को नाम रखे यजुर्वेद जैसे वेदों के चरण में कैसा होगा बड़े विद्वान थे संस्कृत साहित्य का वो पढ़ते कैसे थे वेद को उसके चरण से उन्होंने रचना कराया जहाँ यजुर्वेद पर्ण ऐसा उतार चढ़ाव होता था वेद की रचना ये बंदिश है बोल लंबा बोल है
अच्छा
चक्करदार है पुरानी बात चक्की बोलते जैसे यजुर्वेद है आपका दल बादल है बादलों का समूह कैसा आकाश में बनता है दल बादल नाम उसका है वो बंदिश है तबला पखावत से बोल रहे उसके भी नाम रखे दल बादल करक बिजली
अच्छा
हाँ चमक बिजली बिजली का चमक जो होता है उसके ऊपर भी नाम रखे
अच्छा और चमकदार बिजली के बोल कैसा
जैसे दल बादल है आपका बंदी नगर धित हवा से बादल झर गया काले बादल आपस में नगर धित पर बादल बिजली का चमक इस प्रकार से बालक की आवाज आत्मा टकराकर प्राण शरीर कर भिजन नाश साधा चित कर घृत प्रगर घृत जिन प्राण चमक बिजली होता था वो किंसिता की घटित थकती त्वरी कतर पर दिल न खेती चार में फर्क है ना सब चार में फर्क है माताओं को समूह फर्क ये सब अलग अलग होता था जब पांडी तारों पर लय का जैसे झपताल तार होता है तीन तार होता है आरा चार तार होता है तो इस पर जो उन्होंने रचना किया आगे का तीन मात्रा का छह मात्रा में दादा होता है तो आगे पी रजनी जैसे गुरु को मूल है गुरुओं का धातक धक धात धात एक जुटी एक जुटी एक जुटी तीन मात्रा की तरह दादा तार में तो एक दो तीन एक दो जाना इस प्रकार से आगे पिए रजनी माने आग की जो चीज है बहुत पू है
अच्छा
ऐसा चरण में सीधा न चल के आग पीछा चलना बहुत प्रिय इस प्रकार का
पंडित रामलाल को नृत्य के अतिरिक्त तबला वादन तथा गायन में भी समान अधिकार है। तबला की शिक्षा अपने पिता पंडित कार्तिक राम तथा पंडित जयलाल महाराज से तथा गायन की शिक्षा अपने पिता तथा उस्ताद हाजी मोहम्मद खां बांदावाले से प्राप्त की। पंडित रामलाल सन 1949 में लखनऊ सम्मेलन में प्रथम बार मंच पर आए, जहां से आपको ख्याति मिलना आरंभ हुई। सन 1950 में संगीत सम्मेलन बुलंदशहर, सन 1962 में इटावा के संगीत सम्मेलन में सफल प्रदर्शन किया। आपने अपने नृत्य का प्रदर्शन कलकत्ता, इलाहाबाद, कटक, नागपुर, भिलाई, रायपुर, इंदौर, स्वर साधना समिति बंबई, संकट मोचन बनारस, दिल्ली, छिंदवाड़ा, पुरुष देह, भारत भवन भोपाल, हैदराबाद आदि अनेक शहरों में सफल नृत्य प्रदर्शन कर ख्याति अर्जित की। आप सन 1956 से 1980 तक रायगढ़ में शासकीय सेवा पंचायत विभाग में कार्यरत रहे। इसी दौरान रायगढ़ में चक्रधर संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना कर गायन वादन तथा नृत्य की शिक्षा देते रहे। साथ साथ बेल पहाड़ फैक्ट्री ऑफिसर्स क्लब में नृत्य की शिक्षा देते रहे। साथ ही राउरकेला रेलवे क्लब, रायपुर यूनिवर्सिटी कॉलोनी में नृत्य की शिक्षा देकर अनेक शिष्य शिष्याएं तैयार किए। सन 1981 में मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकादमी के अंतर्गत चक्रधर नृत्य केंद्र की स्थापना की, जहां शासन के अनुरोध पर रायगढ़ घराने के कथक नृत्य शैली की शिक्षा देने के लिए आपके पिता पंडित कार्तिक राम को गुरु तथा आपको सहायक गुरु के पद पर बुलाया गया। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मात्र 4 वर्ष की अवधि में अच्छे कलाकार तैयार कर प्रदेश का नाम देश के कथक जगत में गौरवान्वित किया।
अच्छा, आपके क्योंकि पिताजी नृत्य करते थे तो आपका शौक नृत्य में आपने सीखना शुरू किया।
कि भारत वर्ष के सारे म्यूजिकल हैं ज्यादा सम्मानित, गोल्ड मेडल चांदी मेडल हर जगह से सम्मान। भारत के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अगर नहीं गए तो नाच सुना लगता था।
अच्छा,
उनका उस जमाने में मीडिया का प्रचार तो था नहीं ज्यादा, तो दरबार में जो कलाकार आते थे तबले वाले नाच वाले ये सब रियाज में पखावल वाले देखते थे रियाज उनका। राजा साहब को लाल पत्थर का वहाँ भारी एक कमरा था, तालीम कमरा उसका नाम है, तालीम करना रियाज।
अच्छा,
और ऊपर राजा साहब बैठे रहते थे, कभी कभी नीचे आते थे, पैर की अगर आवाज से कम हुआ तो ऊपर आते थे, देखिए गुरु जी समाज जो है पैर के साथ कम तबला पखावल बैठना ऐसा पैर से आवाज आना चाहिए। तो उनको गुरु लोगों को क्या था कि अपने बच्चों को भी इस काम में क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो जब मैं सीखने पास शुरू किया उनके 5-4-6 साल से, तो जहाँ बचपना था थोड़ा बहुत अपना कराते थे धीरे धीरे करके, थोड़ी शिक्षा हुई मेरी, कुछ बंदिशें नाचना शुरू किया छोटे छोटे बोलों को
जी।
तो ले जाते थे महाराज के दरबार में, तो वहाँ रोज शाम को जो है 7 बजे से लेके 12-1 बजे तक संगीत का कभी नाच का ही ग्रुप होता था। अलग अलग डांसर खड़े हुए अपने अपने नाच गाने के लिए, कई गौ बैठे थे अलग अलग डांस हुआ लेके, एक बंदिश को राजा साहब के ताल को राजा तो मंजूषा से बंदिश होती थी, वहाँ के दरबार के जो लिखते थे ना राजा साहब, उसको लोग स्वर ढालते थे, किस राग में करें, पीलू राग में करें, जय जयवंती राग में करें, आपके खमाज में करें। तो गवैये लोग को पूछते थे कि महाराज क्या सुर करें। अरे हमारे दरबार का जो दरबार में थे बनवाली लाल बनारस के गाने वाले, और एक प्रताप नारायण थे। प्रताप नारायण कौन थे? सुलक्षणा पंडित के पिताजी।
अच्छा,
हाँ उनके पिताजी है सुलक्षणा पंडित रायगढ़ में पैदा।
हाँ हाँ, जतिन ललित।
जी हाँ, अच्छा कलकत्ता के आराधनाथ बोस थे, चुन्नू मिश्र जी थे, ये सब गवैये है। साहित्य जो लिखते थे तो जैसे केलो की बनी अनोखी बहार, केलो नदी किनारे में है, राजमहल अपना बना हुआ है किनारे में, केलो नदी में, तो उस पर जीव लिखते थे साहित्य। बंजार लोग लिखते थे राजा को खुश भी करना है ना, राजा साहब तो है
जी।
केलो की बनी अनोखी बहार, छाया पड़ी मोती महल के, ये सब ज्यादा बड़ा नहीं होता था, बड़ा क्या है, उसको राग में बांधते थे। राग में क्या था वो? केलो की बनी, अब बड़ा ख्याल है, बहुत लंबा चौड़ा इसका ठेका होता है, भिन भिन ऐसा इस प्रकार चलता है, और सब दिखाते हैं उसको। केलो की बनी अनोखी बहार, इस प्रकार छाया पड़ी मोती महल के छोटे रूप में बता रहा हूँ। जब राजमहल में जाता था तो राजा साहब देखते थे,
हाँ।
रोज आता है हमारे पिता को बोलते छत्तीसगढ़ में बात करते बाबू।
अच्छा,
कार्तिक राम ये तो इधर बात थे ना, रोज बाबू और किनारे में बैठे इधर, यह कौन है? तो मोर बाबू है। अच्छा, इधर कुछ सिखा था क्या? हाँ महाराज, थोड़ा सिखा था, ओके बात हो गया था, यहाँ शौक लड़की होगा है देखी चोरी का, तो दिखा ना। तो पास में घर था वहाँ राजमहल के पास, नवागढ़ी, नवागढ़ी में हमारा, जल्दी से दौड़ के गए, घुंघरू ला के बांध दिए, मैं नाचा राज साहब, अरे बहुत अच्छा सुन रहा है, अपने छोटे राजमा जी को, राजमाता जी को बुला लिए, देखो तो कार्तिक का बाबू कितना सुंदर नाच, इसको मैं कार्तिक रामलाल को इसको मैं अपने पास रखूंगा, मैं खुद सिखाऊंगा इसको, इसके गुरु को भी सिखाऊंगा, पिता का प्यार होगा तो ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए गुरु को हमारे सामने थी, तो छह बजे से मेरे सिखाना शुरू था, तो उसके बाद छह बजे जाता
था
उठ के बैठे थे राजा साहब, गुरु जी भी जाते थे हमारे, जलाल महाराज जी हमारे पिता को उनको बुलवा लिए थे, हमारे पिता भी रहते थे रात को, डिनर के बाद में जो प्रोग्राम होते थे, बंदिश लिखने वाले थे चिंतामणि जी, वो लिखते थे नोटर बनाते, बोल बंदिश बोलते थे राजा साहब, लिख के देते थे, और उसने मेरे को रात को याद कराया, सवारी उसको
सिखाते
अभ्यास कराना, हस्तक हस्तक में भी बचपना था ऐसा, जो हस्तक बनता है कायदे का हाथ, ये सब नहीं बन पाता था, अरे बाबू ऐसा करो ऐसा करो, बुरा ऐसा।
अच्छा,
बहुत प्याज दिए, दूध बादाम खिलाते थे आज के बाद में।
अच्छा,
फिर नाश्ता करता था, फिर स्कूल के हेडमास्टर मास्टर के पढ़ाते थे मुझको, हाँ फिर रहता था, फिर घर जाऊँ है, फिर थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर खाना खाने के लिए राजा साहब के पास, पाक शास्त्र वाले बड़े बड़े थे ना, दस बारह खान सामा थे, एक से खाना बन रहा, इसको भी खाओ उसको भी, इतना खाए। अच्छा, तबला भी सिखाना चाहिए, ताल आएगा तो ताल में सही आएगा बाबू जी, तो तबला भी सीखना शुरू कर दिया तीन बजे चार बजे तक शाम को। उसके बाद में तो गुरु थे गाने वाले मोहम्मद खान साहब, उसको बोले गाना सिखाओ आप, गाना गा के भाव करेंगे ना,
गाना भी सिखाना,
गाना स्वयं गा के भाव करते थे पहले जमाना, एक तो नाचे भी सकते सही ढंग से, और फिर सिलेबस की शिक्षा है आजकल, वो गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा रही है, तो कलाकार तो बनते रहिए अपना सब सीखे, थोड़ा बहुत ऐसा डिग्री पा गए हो गया विश्वविद्यालय वगैरह में, फैला गया वगैरह में, जैसे प्रयाग संघ समिति हुआ, गदर महाभारती हुआ, गदर महाविद्यालय, ये सब ने क्या है कि सिलेबस के रूप में थोड़ा सा नाच सिखा दिया।
छत्तीसगढ़ में छोटी सी जगह रायगढ़ और बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार एवं संगीत सम्राट राजा चक्रधर जी का नाम संगीत जगत में चलता रहे। इसी भावना से चक्रधर नृत्य केंद्र में योग्य नर्तक एवं नृत्यांगनाएं तैयार करने में निस्वार्थ भाव से जुड़े रहे। इनका मानना है कि रायगढ़ शैली के सैकड़ों कलाकार तैयार हैं। जिसे रायगढ़ घराना तथा छत्तीसगढ़ का नाम युग युग के लिए गौरवान्वित हो। आपने सन 1990 से 1992 तक इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में नृत्य रीडर के पद पर रहकर अनेकों शिष्य शिष्याएं तैयार किए। इसके अलावा आपने रायगढ़ कथक शैली के प्रचार हेतु अनेकों वर्कशॉप एवं व्यक्तिगत रूप से निस्वार्थ भाव से शिष्य शिष्याएं तैयार किए। आपने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने में अपने पुत्र एवं पुत्रियों को भी विधिवत शिक्षा दी है, जिनके नाम है श्रीमती मीना सोन, श्री भूपेंद्र कुमार, श्रीमती ऐश्वरी, श्रीमती रेखा एवं श्री प्रदीप कुमार, जिनमें बड़ी पुत्री श्रीमती मीना सोन एवं पुत्र श्री भूपेंद्र कुमार देश के अनेकों कार्यक्रमों में अपनी कला का सफल प्रदर्शन कर अपनी रायगढ़ शैली की परंपरा को आगे बढ़ाने में विशेष प्रयत्न कर रहे हैं।
अपने बचपन से नृत्य सीधे महाराज जी से सीखा और फिर उसको आपने जो रायगढ़ घराने का नाम दिलवाया, चौथा घराने के रूप में प्रतिष्ठित करवाया, तो इस तरह से आपने उनको रिपे किया, उनको वापस दिया।
जब ग्रंथ तैयार हुआ ना, काहे का बोल बन जिसको जिसको मुरत पर्ण पुष्पाकर कहते थे, उस बन बहुत बड़ा ग्रंथ था, 28 किलो का बन था, काफी चौड़ा था और उसका जिल्द भी बड़ा ढंग से बना था, ताला चाबी लगता था। तो विद्वान जब आते थे तो हमारे पिता को बोलते थे कार्तिक राम वो उसको देखो तो वो ग्रंथ को लाओ तो यहाँ तो दिखाओ, तो विद्वान लोग को दिखाते थे तो शुरू में ही वो बना था, कौन सा यजुर्वेद पर्ण। हाँ, उसको पढ़ के याद भी कराते थे ना, याद करना पड़ेगा, वह वह बोम काव्यात्मक ध्वन्यात्मक चित्रात्मक, हमने बोल को जब याद किया देखा थे तो सब ऐसा है, काव्य के भी है, शिखरी काव्य है, ये काव्य है, वो काव्य है, साहित्य है, चित्रात्मक है, बोल कर मछली बना हुआ है और पक्षी बना हुआ उसमें बोल लिखा हुआ है, गज विलास लिखा हुआ है, तो बोल बोल शुरू हाथ पूरा बदन चार हाथ पैर में और सूर में नाक में सब आके धा खत्म होता है, तो क्यों ना इसको बंदिश के नाम है। हाँ, उसको अलग ढंग से प्रस्तुति कहते हैं, अब तक उसका अलग अलग है, उसको क्यों ना घराने के रूप में हम सामने लाए। 1978 में दिल्ली में फेलोशिप थी तीनों घराने का, जयपुर लखनऊ बनारस का।
अच्छा,
तो हमारे पिताजी को आमंत्रित किया 1978 में, हमारे पिताजी के सीनियर वही थे उस समय, लच्छू महाराज जिंदा थे, वो महाराज खत्म हो गए थे लखनऊ घराने, और अच्छन महाराज भी खत्म हो गए थे, तो गए वहाँ, पिताजी से हमारे पूछे कि भाई आप तो सीनियर है सब, बनारस के बारे में बताओ, तुकार देवी की जो सुखदेव महाराज जी तो इनके क्या कहते थे, हार नहीं मिला थे सुखदेव महाराज जी बनारस के थे और नेपाल से आए थे, वो उधर से अपना संबंध हो गया था, तो उनके परिवार में थे कौन, अलकनंदा जी, तारा जी, सितारा जी, चौबे उनका एक लड़का, ये सब आते थे वहाँ रायगढ़ में, तो अलकनंदा जी बड़ी चौनाती थी, तो ये सब चीज़ों को देख करके राजा साहब के पास में ना वो थोड़ा अपना भी चीज मांगते थे, इसको भी हमको बारे हमारे बच्चों को सिखाइए, तो चौबे जी को लचकत आरे नवेली पनिहारियाँ, सिर पर गागर पाँवों पर जलियाँ है, भाव पर है, नायिका जो है पानी भरने जाती है, कैसे आती है, कैसे जाती है, कैसे पानी भरती है, चरण क्या है, इस पर उत्साहित थे, तो अलग अलग ढंग से वहाँ भी वो शिक्षा देते थे, और जयपुर वाले जो हैं तो भाव ज़्यादा नहीं करते थे, कहते भी थे तो लचक आए शाम मकुट धरे आए साहित्य, और लखनऊ वालों में क्या था, छाड़ो छाड़ो बिहारी देखे सगरी सारी, सगरी माने सारे, देखो देखो छाड़ो छाड़ो, क्यों कृष्ण जी जो है ना छेड़छाड़ हो रहे राधा कृष्ण का लीला, छाड़ो छक्की बोल रही है वो, छाड़ो छाड़ो बिहारी बिहारी बिहारी, ये सब भाव बताते थे, देखे सार सगरी देखे सार सगरी माने ये कैसा हो रहा है कैसा क्या, इस तरीके से भाव होता था, तो धीरे धीरे करके हमारी शिक्षा राजा दरबार में खत्म हुआ 48 में, फिर हमको हमारे पिताजी लखनऊ ले गए म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, देश के बड़े बड़े कलाकार आए थे, वहाँ लखनऊ में मेरा प्रदर्शन पहली हुआ
12 साल की उम्र में।
और 78 में जो फेलोशिप मिला तो एक हमारे पिताजी को कपिलावास शांति शिक्षा मतलब तो कथक के कुछ जानकार थे। अच्छा महाराज से हमारे पिता को गुरु भाई मानते थे।
अच्छा
बहुत विद्वान लोग थे ना। अग्नि कभी का तो सुने होंगे ना ये सब। और वहाँ संगीत नाटक अकेडमी रिकॉर्डिंग हुआ हमारे पिताजी का 500 रुपये का फेलोशिप। कांतिराम बोले आपको तो पूरा भारतवर्ष जानता है, सब जगह सम्मानित। आप जैसे नाचने वाले तो कोई नहीं है, हर घराने की विद्या, रायगढ़ की विद्या, सब नाचते हैं। तो इस रायगढ़ की पूरी जानकारी हमको लिख के भेजिए आप फेलोशिप में। तो सब मेरे दिमाग में था कि इसको कैसे माने इन बंदिशों को। हमारे पिताजी से पूछता था लखनऊ घराने के बंदिश आप जरा बताइए किस किस बंदिश को अच्छा महाराज सिखाए, कौन बंदिश को आपका शंभू महाराज सिखाए, क्या लक्ष्मी महाराज जी में क्या ऐसी बात थी, उनका क्या था वो भाव में थोड़ा अंदाज उनका ऐसा था ऐसा बताए। तो रायगढ़ की चीज को नवल नवी चली सज के नई साज, हे देखो आई संगनी बजराज, नवल नवी चली। इस पर भाव बताए थे लक्ष्मी महाराज जी। तो हम सोचते कि इसको रायगढ़ घराने के रूप में अपने बंदिश को, रायगढ़ की बात आती है तो जब ये बंदिश के नाम से घराना अपना बना रहे थे, हमारा तो बढ़िया बंदिश है, सब बंदिशों का नाम है
रायगढ़ शैली बस कहा जाता था।
तो फिर फेलोशिप में हमने शिक्षा मंत्रालय की भेजी और रायगढ़ का डिजिटियर वगैरह तो नहीं था, कलेक्टर वगैरह में तो एक डॉक्टर थे जिसको दरबार में पुराने राजा लोग पढ़ाए थे सेक्रेटर सिंह के, उनके पास गया डॉक्टर हरी सिंह के पास। मगर ये राजा साहब सेक्रेटर सिंह के वंश परंपरा पर कुछ आपको तो मालूम होगा पुराने, बोले मेरे पास तो ऐसा जानकारी नहीं, लेकिन एक अंग्रेजों ने लिखा है छत्तीसगढ़ के राजाओं पर एक बुक, उसमें वो देखता हूँ बोले तो देखे तो उसमें रायगढ़ का था, तो उसमें बेर सिंह, तखत सिंह, बख्तावर सिंह ये सब था, झिझार सिंह ये सब नाम हमारे किताब में है सब नाम।
अच्छा
तो जैसा जैसा जिस सन तक वो लोग राज करे उसमें डाल दिए था। अपन रायगढ़ का भौगोलिक जो था दूसरी किताब में था, कथक के विषय में अंग भाव पर थोड़े लिखे उसमें, और बंदिशों को गुरुओं को अलग अलग लिख दिए। फिर रायगढ़ का हमने बंदिश में नाम सही लिखा, उसमें रायगढ़ के साहित्य को भी लिखे, उसमें नौ रस पर भी गीत लिखे राजा साहब भाव करने के लिए, अष्ट नायिका पर लिखे। तो धीरे धीरे जो है ना घराने के रूप में ऐसा शिक्षा मंत्रालय गया। अशोक जी जो थे ना संस्कृति से कहते हैं साहित्यकार थे, वो ब्रिटिश थे तो उनके विशेष को भी सीखना था, तो अंबिकापुर से सब परिचय हुआ। तो भोपाल में एक वर्ष आप किए रायगढ़ पर, देश के सारे विद्वानों को बुलाए, अभिजू महाराज वगैरह सब आए, जयपुर वाले आए, कथक केंद्र के डायरेक्टर आए, संगीत नाटक अकेडमी डायरेक्टर आए, पूरे हाल में भरा हुआ। तो हम हमारे साथ में रायगढ़ के और जो कलाकार थे
उनको लेके गए,
बर्मन लाल जी, फेतु दास जी, कल्याण दास जी, ये सबको हम बुलाए उनके साथ, चलो भाई सभी साथ। तो लगा था मन की हमारे पिता तो थे ही, हमने बोला भाई अशोक जी बोले रामलाल जी बेजू महाराज जी आपका तो बहुत सुनते हैं, लेकिन उनको मालूम था एक कुछ किताबें मिल गई थी उनको कहीं से।
अच्छा
ये बंदिशों के बारे में पूरा बंदिश का किताब पढ़े थे, वो सबको दिखाते दिखाते थे, देखो रायगढ़ की बंदिश से कैसा नाम रखते हैं, इसके चलन क्या है, कैसा। तो पढ़ के हमारे पिता मैं बोले रामलाल जी आप सुनाइए रायगढ़ की बंदिश सुनाइए। तो मैंने कहा हमारे पिताजी बोले ये गुरु के लड़के हैं मेरे, गुरु के अक्षर महाराज जी के लड़के हैं, बेजू महाराज भले ही छोटे हैं लेकिन गुरु के लड़के हैं, गुरु परिवार हैं, उनके आशीर्वाद लोगे तो मेरे आज्ञा है बेजू महाराज जी को। हाँ हाँ भैया। फिर मैं बात देखिए प्राकृतिक रचनाओं पर हम बोल कैसा लिखा है, नाम क्या क्या है उसका, ये दल बाधा दिया। मैं बोला आज शिव गणेश चतुर्थी है और आज ये सब बात हो रही है, मेरे को सुनाना तो उनके श्रद्धांजलि के रूप में माता बाहर के हमारे पिता को तो सब मालूम, कल्याण जी को मालूम है, बनबर फिर जा जी तो ज़्यादा दिन रहे नहीं, ये लोग अलग अलग गुरुओं से थे। तो पढ़ा मैं दल बाधा कर दीजिए जिंता वही सुंगा वही है पुरंग वाहन दावा नल आग लग जंगल में। तो बहुत खुश हुए सब लोग।
गुरु पंडित रामलाल जी मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के अनुरोध पर सन 1993 में प्रमुख गुरु के पद पर पुनः कार्य प्रारंभ किया। आप मध्य प्रदेश के कला परिषद के सम्माननीय सदस्य रहे। देश के कला जगत में आपके अमूल्य योगदान के लिए आपको अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया, जिनमें करवट कला परिषद, संस्कार भारती, कला मंदिर, आकाशवाणी भोपाल द्वारा कला साधना सम्मान, मधुवन कला केंद्र द्वारा श्रेष्ठ कला आचार्य सम्मान, ब्रज संगीत विद्यापीठ मथुरा द्वारा सम्मान आदि अनेकों सम्मान शामिल हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 1995 का केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, सन 2030 का मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिखर सम्मान एवं सन 1906 में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चक्रधर सम्मान शामिल है। संप्रति आपने अपने पिता द्वारा लिखित पुस्तक रायगढ़ में कथक के संपादन में सहायक के रूप में कार्य किया। पंडित रामलाल को रायगढ़ कथक शैली की विशेषताओं और दुर्लभ रचनाओं का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए जयपुर कथक केंद्र, दिल्ली कथक केंद्र, कमला देवी संगीत महाविद्यालय रायपुर, धमतरी, देवास, भोपाल आदि में कथक कार्यशालाओं के लिए आमंत्रित किया गया है।
तो फिर आपके रायगढ़ घराने की कहीं से घोषणा हुई कि वहीं से फिर उसका नामकरण हो गया?
तो घराने का जब हुआ तो लोग जो है किसाई जी कहते हैं, हमारे यहाँ तो लोग गए सिखाए भाई घराना कहते हैं। तो भाई कहीं से भी कोई चीज सीखेगा उस पर कुछ नया मजार करेगा तो उसका तो नाम अलग देना पड़ेगा। जब साहित्य से घराना बन जाता है, उसके नाचने के ढंग से बनता है, तो हमारे यहाँ तो अलग ढंग से हुआ है सबका। तो हमारा तो अलग घराना है, मानना है माने घराने वाले ज्यादा, बाकी बाद में फिर धीरे धीरे सिलेबस में आने लगा रायगढ़ की बंदिशों के बारे में कि भाई तो क्या है, सप्त शिखर पर बोल लिखो। अब सप्त शिखर का बोल किसी घराने को मालूम नहीं, तो धीरे धीरे करके आया, मैंने विद्यार्थी भी सिखाया चक्रधर केंद्र में।
पंडित रामलाल को 1996 में भारत के माननीय राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें 2006 में भारत के माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिष्ठित पुरस्कार चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया था। 2003 में मध्य प्रदेश द्वारा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आपको रायगढ़ कथक शैली के लिए उनके अविश्वसनीय काम के लिए सरकार और कई संगठनों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। पंडित रामलाल ने बड़ी संख्या में शिष्य शिष्याओं को प्रशिक्षित किया जो रायगढ़ कथक शैली के कलाकार और प्रतिपादक बन गए।
आज के जो कलाकार आ रहे हैं, जो जिनको कला के प्रति रुचि है, जो नृत्य सीखना चाहते हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप?
ये क्या है कि सीखे, कला है ना, कला किसी रूप में स्वास्थ्य के लिए भी फायदा है, अंग प्रत्यंग का संतुलन होता है, पैर हाथ चलाते हैं, चक्कर लगाते हैं तो श्वास की भी फायदा होता है, शास्त्रीय अंग ज्ञान का ज्ञान होता है, लय ताल कैसा है, माताएं कैसे हैं, इसमें हस्तक कैसे करते हैं, भाव अभिनय कैसे करते हैं, तो थोड़ा बहुत जो भी सीखते हैं सीखे बच्चे और इसको प्रचार में लाएं, ताकि आज के समय में पढ़ाई लिखाई के जिस प्रकार से स्कूलों में हो रहा है तो ज्ञान तो होता है हर बात का, इसी तरीके से अगर शिक्षा विभाग में इस कथक को भी एक रूप बनाया जाए, जैसे मध्य प्रदेश में है कॉलेज में है, हमारे शिक्षा लोग हैं जहाँ जहाँ पोस्ट था जो चाहते हो ये कला के बढ़े, कलाकार बने, सब सीखे पढ़े आनंद लिए।
उन्होंने रायगढ़ कथक शैली की अनूठी बंदिशों और रचनाओं का ज्ञान फैलाने के लिए असाधारण काम किया है। उनके अथक प्रयास से रायगढ़ कथक शैली को रायगढ़ घराना के नाम से जाना जाता है और अब पूरी दुनिया में चौथे कथक घराने के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। उन्होंने रायगढ़ कथक शैली को विकसित करने और कथक घराने के रूप में स्थापित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हरपा रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे वर्तमान में बिलासपुर में निवासरत पद्मश्री रामलाल बरेठ के जीवन परिचय और बातचीत पर आधारित कार्यक्रम। भेंटकर्ता संज्ञा टंडन, जानकारी मातृका और संयोजन था अनिश श्रीवास का।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।